ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेन् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवत महापुराण से पाठ षष्ठ स्कंद सातवां अध्याय श्लोक संख्या 38, 39 और 40। बोर्ड में श्लोक 39 लिखा है, उसी को हम पाठ करेंगे। सुरद्विषां श्रियं गुप्तां औशनस्यापि विद्यया अच्छिद्यादान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः। सुरद्विषां श्रियं गुप्तां औशनस्यापि विद्यया आच्छिद्यादन्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः। सुरद्विषां श्रियं गुप्तां अशोनस्यापि विद्यया अच्छिद्यादान् महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभुः। श्लोक 38। श्री बादरायण उवाच तेभ्य एवं प्रतिश्रुत्य विश्वरूपो महातपः पौरोहित्यं कृतश्चक्रे परमेण समाधिना। अनुवाद, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, देवताओं को यह वचन देकर चारों ओर से देवताओं से घिरे हुए महान विश्वरूप अत्यंत उत्साह एवं मनोजोग के साथ पुरोहिति कर्म करने लगे। समाधिना शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। समाधि का अर्थ है स्थिर मन से पूर्णतया तल्लीन होना। विश्वरूप अत्यंत विद्वान ब्राह्मण था। उसने न केवल देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की, वरन उनकी प्रार्थना को गंभीरतापूर्वक ग्रहण किया और अविचल चित्त से पुरोहित्य कर्म करने लगा। तात्पर्य यह है कि उसने किसी आर्थिक लाभ की पुष्टि से नहीं, वरन देवताओं को लाभ पहुंचाने के लिए पुरोहित स्वीकार किया। यही पुरोहित का कर्तव्य है। अत पुरोहित शब्द का तात्पर्य है परिवार का हित करने वाला। पुर शब्द का अर्थ परिवार और हित शब्द का अर्थ कल्याण। पुर शब्द का अर्थ भी प्रथम है। पुरोहित का प्रथम कर्तव्य है कि वह सभी प्रकार से अपने शिष्यों का आध्यात्मिक तथा आर्थिक लाभ सोचे, तभी वह संतुष्ट रहता है। पुरोहित को कभी भी अपने स्वार्थ के लिए वैदिक अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। श्लोक 39। सुरद्विषांग श्रियं गुप्ताम ओसन्यासपि विद्यया अच्छिद्यादन महेन्द्राय वैष्णव्या विद्यया विभु। अनुवाद। यद्यपि शुक्राचार्य ने अपनी प्रतिभा एवं नीति बल से देवताओं के शत्रुओं के नाम से विख्यात असुरों के ऐश्वर्य को सुरक्षित कर दिया, किंतु अत्यंत शक्तिमान विश्वरूप ने नारायण कवच नामक एक सुरक्षा चक्र स्तोत्र की रचना की। इस बुद्धिमतापूर्ण मंत्र से उन्होंने असुरों का ऐश्वर्य छीन कर स्वर्ग के राजा इंद्र को दे दिया। तात्पर्य, देवों तथा असुरों का अंतर यही है कि देवता भगवान विष्णु के भक्त है, जबकि असुर श्री श्री देवी काली तथा देवी दुर्गा के भक्त है। कभी कभी असुर भी श्री ब्रह्मा के भक्त होते हैं। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु श्री ब्रह्मा का भक्त था, रावण श्री शिव का भक्त था, महिषासुर देवी दुर्गा का भक्त था। देवतागण भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। विष्णु भक्त स्मृतो देव आसुर तद विपर्जय। असुर सदैव विष्णु भक्तों के अर्थात वैष्णव के विरोधी होते हैं। वैष्णव के विरोध हेतु असुरगण शिव ब्रह्मा काली दुर्गा आदि के भक्त बन जाते हैं। पुराकाल में देवों तथा असुरों में शत्रुता थी और अब भी चल रही है, क्योंकि श्री शिव देवी दुर्गा के भक्त भगवान विष्णु के भक्त वैष्णव से सदैव द्वेष रखते हैं। भगवान विष्णु तथा शिव के भक्तों के बीच का यह तनाव सदा रह आया। स्वर्गलोक में असुरों तथा असुरों के बीच दीर्घ काल तक युद्ध चलता रहा। यहां हम देखते हैं कि विश्वरूप ने देवताओं के लिए एक सुरक्षा कवच तैयार किया जो विष्णु मंत्र से पूरित था। कभी कभी विष्णु मंत्र को विष्णु ज्वर और इसी प्रकार शिव मंत्र को शिव ज्वर कहते हैं। हम शास्त्र में असुरों तथा असुरों के बीच होने वाले युद्ध में शिव ज्वर तथा विष्णु ज्वर का प्रयोग होते पाते हैं। इस श्लोक में आगत सुरत दिशाम शब्द का अर्थ देवताओं के शत्रुओं का, जिससे भी नास्तिकों का बोध होता है। श्रीमद भागवत में अन्यत्र कहा गया है, भगवान बुद्ध का जन्म असुर तथा नास्तिकों को विमोहित करने के लिए हुआ था। श्री भगवान अपने भक्तों को नित्य ही आशीर्वाद देते हैं, इसकी पुष्टि भगवान स्वयं भगवद गीता में करते हैं। कौन्ते ये प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, मैं निर्भीकता पूर्वक घोषित करता हूँ कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। श्लोक संख्या 40 इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उसमें भी तात्पर्य नहीं है। जया गुप्त सहस्रख्योल जिज्ञे सुर चमूर विभु तांग प्राह स महेन्द्राय विश्वरूप उदारधि। अनुवाद। अत्यंत उदारता उदारचित्ता विश्वरूप ने राजा इंद्र को यह गुप्त स्तोत्र बता दिया, जिसने इंद्र की रक्षा हो सकी और असुरों की सैन्य शक्ति जीत ली गई। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के षष्ठ स्कंध के अंतर्गत इंद्र द्वारा बृहस्पति का अपमान शीर्षक सातवें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानं तिमिरांध्यस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानितंश। नमों विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे। ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣೆ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶಿವಾಸಾದಿ ಗೌರಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ತೋ ಅಭಿ ಹಮ ಸುನ್ ರಹೆ ಥೆ ದೇವತಾವನೆ ಅತ್ಯಂತ ತೇಜಸ್ವಿ ತಪಸ್ವಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿಶ್ವರೂಪಕ್ಕೂ ಅಪ್ನಾ ಪುರೋಹಿತ್ ಪದ ಸ್ವೀಕಾರ ಕರ್ನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕಿಯೇ. ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ಉನ್ಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಮೇ ಪಡ್ಕರ್ ಪುರೋಹಿತ್ಯ ಸ್ವೀಕಾರ ಭೀ ಕರ್ ಹೀ ಲಿಯೆ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಮನ ಜುಗ ಲಗಾ ಕರ್ಕೆ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನಾ ಇಸ್ಮೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಜಬ್ ದೇವತಾಓ ಕೆ ಪಕ್ಷ ಮೇ ಪುರೋಹಿತ್ಯ ಉನ್ಕೆ ನೇತಾ ಬನಾ, ಮತಲಬ್ ಯ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಲಿಯಾ ಜಮೀದಾರಿ ಲಿಯಾ ಕಿ ಮೈ ಆಪ್ಕೋ ಜೀತಾ ಕರ್ಕೆ ರಹೂಂಗಾ, ಆಪ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಮೇ ಕರುಂಗಾ. ಪುರೋಹಿತ್ಯ ಕಾ ಕಾಮ ಹೈ ಜಜಮಾನ ಕಾ ಪಹಲೆ ಹಿತ ಸೋಚನಾ, ಆಪ್ಕಾ ಹಿತ ಮೇಲೆ ಹಮೇ ಬೇಘರ್ ಹೋ ಚುಕೆ, ಹಮೇ ಘರ್ ದಿಲಾವ ಹಮಕೋ ಪಹಲೆ ಹಮಕೋ ನಿಕಾಲ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ತೋ ಬೋಲಾ ಮೈ ಕೈಸೆ ಭೀ ಕೈಸೆ ಕರುಂಗಾ, ಕೈಸೆ ಕರೇಗಾ ಕಿ ಜೋ ವಿಪಕ್ಷ ಪಾರ್ಟಿ ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕುಚ ಕಮಜೋರ್ ಥೋಡಿ ಹೈ, ಆಂಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಕೌನ್ ಹೈ ಜೋ ಅಸುರ ಹೈ, ಉನ್ಕೆ ಜೋ ರಕ್ಷಕ್ ಹೈ ಉನ್ಕೆ ಗುಪ್ತಾ ಕೌನ್ ಹೈ ಉಸುನ್ಯಾ ಉಸನಾ ಕವಿ. ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಕಹತೆ ಕವಿ ನಾಮ ಉಸನಾ ಕವಿ, ವಿದ್ವಾನ ಮೇ ಉಸನಾ ಮತಲಬ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೂ, ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೇ ಏಕ ನಾಮ ಹೈ ಉಸನಾ. ಭಗವಾನ್ ಗೀತಾ ಮೇ ಕಹತೆ ನಾ ದಸವಾ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿಭೂತಿ ಯೋಗ ಮೇ ಕವಿಯೋ ಮೇ ವಿದ್ವಾನ ಮೇ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಹೂ. ಬಹುತ್ ಬಡೇ ಭಾರಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಥೆ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಅಸುರೋ ಕೆ ಪುರೋಹಿತ್ ಥೆ ಹೋ. ತೋ ಉನ್ಕೂ ಬಹುತ್ ಭಾರಿ ಜ್ಞಾನ ಥಾ, ಯಹಾಂ ತಕ್ ಕಿ ಉನ್ಕೆ ಪಾಸ್ ಮೃತ್ಯು ಸಂಜೀವನಿ ಜ್ಞಾನ ಥಾ, ಮೃತ್ಯು ಸಂಜೀವನಿ ವಿದ್ಯಾ ಥಾ. ಜಬ್ ದೇವಾಸುರ ಸಂಗ್ರಾಮ ಸಬ್ಸೆ ಪಹಲೆ ಛಿಡಾ ಥಾ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ ಕೆ ತಟ ಪರ್, ಭಗವಾನ್ ನೆ ತೋ ಛಲ್ ಕರ್ಕೆ ಮೋಹಿನಿ ಬನ್ ಕರ್ಕೆ ಅಮೃತ ಲೇಕರ್ ಕೆ ಬಾಂಟ್ ದಿಯೆ, ಉನ್ಕೆ ಸಾಮ್ನೆ ಹಿ ಪಿಲಾ ದಿಯೆ ದೇವತಾಓ ಕೋ, ಅಸುರೋ ಕುಚ ನಹೀ ದಿಯೆ. ತೋ ಭಿಡ್ ಗಯೆ ಅಸುರ ಲೋಕ ದೇವತಾಓ ಕೆ ಸಾಥ್, ಭಾರಿ ಘಮಾಸಾನ ಯುದ್ಧ ಹುವಾ. ತೋ ಉಸ್ ಯುದ್ಧ ಮೇ ಭಗವಾನ್ ಭೀ ಭಾಗ ಲಿಯೆ ಥೆ, ಅಸುರೋ ಕೋ ಮಾರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ಅಸುರೋ ಕೆ ರಾಜಾ ತಬ್ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಥೆ, ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಮೇ ಲಡಾಯಿ ಹೋ ರಹಾ ಥಾ. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಭೀ ಮಾರ್ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ಉನ್ ಗಲಾ ಕಾಟ ದಿಯಾ ಗಯಾ, ಔರ್ ಬಡೇ ಬಡೇ ದೇವತಾಓ ಕೆ ಸಬ್ ಮಾರ್ ದಿಯಾ ಕಾಟ ದಿಯಾ ಗಯಾ. ಲೇಕಿನ್ ಜೈಸೆ ಯುದ್ಧ ಖತಮ್ ಹುವಾ, ಸಬ್ ಉಠಾ ಉಠಾ ಕರ್ ಲಾಸ್ ಲೇಕರ್ ಆಯೆ, ಔರ್ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ನೇ ಮಂತ್ರ ಪಡ್ ಕರ್ಕೆ ಸಬ್ಕೋ ಫೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ದಿಯಾ. ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಮರ್ ಚುಕೆ ಥೆ, ದುಬಾರಾ ಬಚಾ ದಿಯಾ ಉನ್ಕೋ. ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ ಕೆ ಕೃಪಾ ಸೆ ದುಬಾರಾ ಜನ್ಮ ಪ್ರಾಪ್ತ ಹುವಾ, ಜೀವನ ದಾನ ಹುವಾ ಉನ್ಕೋ. ಐಸೆ ಕೈ ಬಡೇ ಬಡೇ ಸೇನಾಪತಿ ಅಸುರಕ್ಕೆ ಬಚಾ ದಿಯೋ ಉನ್ನೆ. ತೋ ಇತನೆ ಬಡೇ ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಮೃತ್ಯು ಸಂಜೀವನಿ ಕೆ ಜ್ಞಾತಾ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯನೇ ಜೊ ಅಸುರಗಣಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕೋ ಸುರಕ್ಷಾ ದೇಕರ್ ರಖೆ ಹೇ, ಉನ್ಕೆ ಸಾಮನಾ ಕರ್ನಾ ಕೋ ಛೋಟಿ ಮೋಟಿ ಬಾತ್ ನಹೀ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಹತೆ ಹೈ ಕಿ ವಿಶ್ವರೂಪ್ ಮಹಾನ್ ತಪಿ ಪರಮೇಣ ಸಮಾಧಿನ, ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಸಮಾಧಿ ಸ್ತರ ಪರ್ ಖೂಬ್ ಮನ್ ಲಗಾ ಕರ್ಕೆ ಲಗಾ ಕೆ ಕಿಸಿ ನಾ ಕಿಸಿ ಪ್ರಕಾರ ಸೆ ತುಮೆ ಮೇರೆ ಚೇಲೆಂಕೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕರುಂಗಾ, ಮೇರೆ ಜಜಮಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಕರುಂಗಾ. ಇಸ್ಲಿಯೇ ಬೋಲ್ತೆ ಕಿ ಸಮಾಧಿ ಜೋಗ ತಕ್ ಚಲಾ ಗಯಾ. ಓ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ನಾ ಬಹುತ್ ಸೋಚ ವಿಚಾರ ಕರ್ತೆ 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 ಕಿ ಐಸಾ ಉಪಾಯ ನಿಕಾಲಾ, ಬೋಲ್ತೆ ಏಕ ಐಸಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ನಿಕಾಲಾ ಕಿ ಮಹೇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಬಚಾ ಲಿಯಾ, ಅವರು ಅಸುರಕ್ಕೆ ಸಂಪತ್ತಿ ಛೀನ್ ಕರ್ಕೆ ಉನ್ಕು ದೇ ಭೀ ದಿಯಾ. ಓ ವಿಶೇಷ ಕವಚ ಕ್ಯಾ ಥಾ, ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ. ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಕವಚ ಕಾ ಆವಿಷ್ಕಾರ ವಿಶ್ವರೂಪನೆ ಕ್ಯಾ ಪಹಲಿ ಬಾರ್, ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ ಸೇ ಈ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ ತಯಾರ ಕ್ಯಾ, ಅವರು ಇಂದ್ರಕ್ಕೂ ಪಹನಾಯಾ, ಇಂದ್ರಕ್ಕೂ ದಿಯಾ. ಔರ್ ಜಹಾ ನಾರಾಯಣ ಆ ಗಯೆ ತೋ ವಹಾ ಶಿವ ಜಿ ದುರ್ಗಾ ಜಿ, ಯಹಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಜಿ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಕಹತೆ ಯಹೀ ದೋ ಹೀ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ. ಜೋ ದೇವತಾ ಹೈ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತ ಭವಿತ್ ಸೂರ, ಜೋ ಭವಿತ್ ಜೋ ದೇವತಾ ಹೈ ವೋ ಹಮೇಶಾ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಫಲೇವರ್ ಹೋತೆ ಹೈ, ವಹೀ ಉನ್ಕಾ ಪಹಚಾನ್ ಹೈ. ದೇವತಾ ಹಮೇಶಾ ಚಾಹೆ ಗಡಬಡಿ ಹೋ ಕುಛ ಭೀ ಹೋ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ಜೋ ಭೀ ಕಷ್ಟ ಹೋ. ಔರ್ ಅಸುರ ತದ್ ವಿಪರ್ಜಯ, ಜಸ್ಟ್ ಉಸ್ಕಾ ಉಲ್ಟಾ ಹೈ, ಅಸುರೋ ಕಾ ಕಾಮ ಉನ್ಕಾ ಉಲ್ಟಾ ಕರೆ, ಜೋ ದೇವತಾ ಕರೆಂಗೆ ಉನ್ಕೋ ಉಲ್ಟಾ ಕರೆಂಗೆ. ಕ್ಯಾ ಕರೆಂಗೆ ನಾ ವೋ ಜಬ್ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಯೆಂಗೆ ತೋ ವಿಷ್ಣು ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ವೋ ದೇವತಾಓ ಕೆ ಪಾಸ್ ಜಾಯೆಂಗೆ. बोलते बड़े बड़े देवता सी ब्रह्मा देवी काली हेंटेन जो उन्हीं के पास सब जाएंगे वो लोग। ये शक्ति तो किसी तपस्या करे लाना पड़ेगा, उन्हीं की तपस्या करेंगे। प्रभुपाद ने लिस्ट गिनाए बड़े बड़े असुरों का, हिरण्यकशिपु रावण कंस महिषासुर आदि आदि सब, कोई देवी कोई देवता ब्रह्मा शिव काली दुर्गा सब उनके उनके फॉलोअर थे। आजकल संसार में कुछ कम नहीं उनके, हाँ बड़ी मात्रा में मौजूद हैं वो। और हमेशा उन दोनों का होड़ लगा रहता है, इन दोनों का होड़ तो हमेशा लगा रहता है, बड़े ग्रुप है। ऐसा भी हुआ था क्योंकि आजकल बाजार में कोई सामान खरीदने जाए तो बड़े भाग्य में किसी को सही माल मिल जाए, नहीं तो डुप्लीकेट ही डुप्लीकेट है ना, नहीं भेजाल। कोई भी वस्तु खरीदो आप तो बड़े भाग्य सौभाग्यवान हो तो सही माल मिल गया, नहीं तो ठग गए। लेकिन आजकल के मार्केट में जितने प्रोडक्ट निकल रहा है उसमें जो भेजाल है सबसे ज्यादा भेजाल किसी वस्तु में जानते हैं हमने, सबसे ज्यादा मिश्रण किस में है, भगवान में। मार्केट में भगवान के बारे में जानकर प्राप्त करने जाओ तो सबसे डुप्लीकेट ज्ञान वही अवेलेबल है, बहुत ज्यादा भेजाल है उसमें मिश्रित मिलेगा। आम आदमी बेचारे करे तो करे क्या, वो तो सोचेगा भाई भगवान के बारे में कुछ मैं जानू तो कैसे जानू, भाई भगवान का आदमी से जानू तो भगवान का आदमी कौन है, सबसे पहला जो मोटे मोटे चोटी रखे हैं इतने बड़े बड़े जटा, हाँ तो कपड़ा लत्ता पहनते नहीं वैसे जटा रखेंगे, वही होंगे भगवान वाले व्यक्ति हैं, उनके पास जाएंगे और वो तो क्या पाठ पढ़ाएंगे समझ नहीं आएगा, भगवान क्या है आगमन करो शून्य है निराकार कुछ कह देंगे समझ में नहीं आएगा, बोले वो क्या कहते हैं निराकार शून्य कुछ समझ में नहीं आया। उठ करके आते हैं बोले नहीं इसे जटा वाले नहीं तो तिलक वाले के पास जाए, मोटे मोटे तिलक ऐसे ऐसे डाले लंबा चूड़ा हाईवे की तरह, तो उनके पास जाए बोले भगवान के बारे में बताओ, भगवान भगवान तो आप ही हो, भगवान हम ही है, बिल्ली भगवान है कुत्ता भगवान है पेड़ भगवान है सब भगवान है, केवल मंदिर में जो भगवान को आरती करते हैं उन्हीं को छोड़ करके, मतलब भगवान को छोड़कर बाकी सारे भगवान है, केवल भगवान भगवान नहीं है बाकी सारे भगवान। लो कितने प्रकार के, कोई बोले ऊपर वाला कोई बोले नीचे वाला कोई बोले लाइट कोई बोले ये वो, इतने प्रकार के मिश्रण ज्ञान भगवान के बारे में तो बड़े भाग्य में अगर आप पहुंचे होंगे तो इस कण के हाथ लगे तो कहीं जान पावे, नहीं तो गए नहीं मिलेगा। हजारों आध्यात्मिक संस्थाएं हैं क्या बताएं, भगवद गीता के नाम पर प्रचार करते हैं, श्रीमद भगवद गीता 560 प्रकार के भाष्य तो केवल भारतवर्ष में प्रचलित है। वो ऐसे ऐसे भगवद गीता के व्याख्याकार कथा लिखते हैं, बोलते हैं गीता तो कृष्ण थोड़ी कहते, कौन कहते, शिव जी कहते गीता, अरे श्री भगवान वचन शिव जी, अरे कौन से शिव जी, जो पार्वती नहीं नहीं वो शिव जी नहीं है, हमारे गुरु जी जो शिव जी हो वो शिव जी है। बोलो अरे ऐसे ऐसे मूर्ख लोग हैं उनको मानते भी है, हजारों संख्या में उनके फॉलो भी करते हैं, बोलते हैं गीता 18 अध्याय नहीं 6 अध्याय वाला है, अब उसको भी लोग मानते हैं, वो गीता बीच बेचा भी जाता है। अब कितने कितने प्रकार की मिश्रण भगवान के नाम पर, भगवान तो सोचते हैं कि मैं क्या करूं वो भी परेशान होते होंगे, ये मनुष्य इतने उस्ताद है क्या से क्या कर दिया, मैं एक बार बोला कुछ लेसन आधे घंटा में इसको ये बना दिया, 560 प्रकार में व्याख्या लिख चुका है इसके ऊपर, अभी भी समझ नहीं आता उसको, नहीं समझ में आएगा। भगवान है, भगवत वाणी इतने रहस्यात्मक है, तुम मत्थापची करके कितने भाष्य लिख चलो फिर भी नहीं समझ पाएगा, नहीं समझ पाए। बिना भगवान को पहचाने बिना भगवान के भक्त बने कोई भगवान को ना समझे ना भगवान की बात को समझे, असंभव है। ईश्वर कृपाले स है ते जहारे सही त ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे, प्रसाद लेसानुगृहित वही जानाधि तत्वं भगवान महिमा। बिना भगवान की कृपा से बिना भगवान के प्रसाद से भगवान को कोई जान ले असंभव है। भक्तिनो ठाकुर तो ठोक करके कहते हैं निज बल चेष्टा प्रति भरसा छाड़िया तुम्हार इच्छाए अछि निर्भर करिया। ये ठाकुर भक्ति विनोद का उद्गार है, वो कहते हैं कि मेरा चेष्टा मेरा बल, मेरा प्रयास, मेरा साधना के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं, मैं कुछ कर पाऊं, कोई विश्वास नहीं। फिर क्या विश्वास क्या है? ना केवल आपके कृपा के ऊपर, आपके इच्छा के ऊपर पूर्ण भरोसा है। आप करेंगे, कराएंगे, मैं आपको समझ नहीं पाऊंगा, लेकिन आप मुझे समझा देंगे तो फिर किसे नहीं समझूंगा, यही भरोसा रख करके चलता हूं। लेकिन हम लोग तो अपने बलबुते पर चलना चाहते हैं, ऐसे नहीं हो सकता, यह आचार्यों का उपदेश नहीं है। लेकिन असुरगण का ही है, हमेशा अपने बल से चलेंगे, नहीं तो देवताओं के पास चलेंगे, प्लीज हेल्प मी। और देवता भी ऐसे हैं, उनको उसकाते हैं। लेकिन देवताओं चाहे भले कुछ भी कष्ट हो, गड़बड़ी हो, विष्णु के पास जाते हैं। और ये गड़बड़ी, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कहीं जाते हैं तो बात तो है कि भाई संसार सागर से पार पाना हो तो भगवान की भजन तो करना ही पड़ेगा। अरे भाई भगवान कौन, पता तो लगाओ, भजन भजन किसका करेंगे, कौन भगवान का करेंगे, इंडिया में भगवान का कमी थोड़ी है। जिस प्रांत में चले जाओ कई भगवान निकलते हैं, निकलते ही जा रहे हैं, है ना, नहीं कितने कितने भगवान। अरे उन भगवान को तो बोलेंगे नहीं, हम ऐसे ऐसे भगवान को नहीं मानते। कैसे भगवान को मानते हैं? शास्त्र के एविडेंस के अनुसार, शास्त्र प्रमाण के अनुसार जो भगवान है उन्हीं को भगवान मानेंगे। भारतवर्ष में यह भी कुछ कमी नहीं है, शास्त्र के प्रमाण के हिसाब में भगवान की कम नहीं है, बहुत भगवान है शास्त्र प्रमाण के हिसाब से भी। हाँ, अब आपके इसी प्रांत में गणपति बाबा, उनको भगवान मानते हैं, वो भी शास्त्र के प्रमाण देते हैं। हाँ, और दूसरी प्रांत में चल जाए बम बम भोले, हो साक्षात भगवान तो ईश्वर वही है, वो भी पुराण के एविडेंस देते हैं। उस तरफ चले जाए मांगो देवी मां, देवी आद्या शक्ति, आदि शक्ति ही सब कुछ है, बाकी सर ब्रह्मा शिव विष्णु ये सब उनके फॉलोअर है। और कहीं जाओ कुछ है बचे, कुछ ब्राह्मण गोष्ठी बोलते नहीं, नहीं जी, सृष्टि के प्रथम जीव, सृष्टिकर्ता साक्षात चतुर्मुख ब्रह्मा, चार मुख से चार वेद निकलता है, वेद गर्भा, वही है भगवान, वही बनाया सब कुछ, वही बनाया ब्रह्मा। बहुत कम बचे कुचे कुछ लोग हैं जो गीता आजीटीज के फॉलोअर हैं, वो मानते हैं कि कृष्ण या विष्णु ही भगवान है। तो ऐसे तो शास्त्र के प्रमाण के हिसाब में भी 5 मूर्ति भगवान निकले। अब आज का नहीं, बहुत पहले जमाने से उसके ऊपर बहुत युक्ति तर्क होने लगा। इसको मिटाने के लिए भगवान वेद व्यास ने कॉन्फ्रेंस बुलाई एक बार। हाँ, तो उनके आश्रम बद्री के आश्रम में एक स्पेशल कॉन्फ्रेंस बुलाए ऑल ओवर इंडिया, और ऊपर से लोग सभी, नीचे लोग से सब बड़े बड़े विद्वान ऋषि महर्षि सबको बुलाए। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट यह था कि भगवान का निर्णय, ये इतने सारे भगवान बने हैं शास्त्र पुराण के हिसाब से, उनके बहुत सारे फॉलोअर हैं, उनसे निर्णय करके देखा जाए ये सारे भगवान है कि उनमें से कोई 2-3-4 है कि कोई एक है कि क्या है, क्या है ही नहीं। तो ये सब्जेक्ट के ऊपर बहुत बड़ी सम्मेलनी बुलाया गया और हजारों हजारों संख्या में प्रेजेंस हुआ, लोग आए अपने अपने ग्रुप के साथ। गर्मी के समुद्र से बद्रीनाथ जाना चाहते ही यहीं से, और जो खाना पीना की व्यवस्था फ्री हो, ट्रांसपोर्ट भी फ्री कर दिया जाए, मतलब रोड में जाए तो डरेंगे कोई जाएंगे नहीं, अगर फ्लाइट में लिया जाए देवताओं की व्यवस्था तो ऊपर से ले जाएंगे आपको। तो सब गए, बहुत लाखों संख्या में भीड़ इकट्ठा हो गया पूरे भारतवर्ष से, और सभी अपना अपना ग्रुप के साथ गए थे, अपने झंडा ऊंचा करके नारा के साथ जाते थे, गणपति बाबा जिंदाबाद, कोई बम बम हर हर महादेव करते थे, कोई देवी मां के करते थे, कोई ब्रह्मा जी के, कोई विष्णु जी के, सब अपना अपना गोष्ठी के साथ जय जयकार करते हुए पहुंचे। पहुंचने के बाद मंच के ऊपर से बड़े बड़े चुने हुए पुरखा ऋषि महर्षि बैठे, भाई विचार किया जाए उनसे बाकायदा भगवान श्रेष्ठ कौन है जिसको माना जाए। खूब तर्क चला, डिबेट खूब चला, कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। 15 दिन तक झगड़ा चलते रहा, कोई निर्णय नहीं आया। तो अंत में बड़े बड़े लोग बोले ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है ना, फिर क्या, ना टाइम खराब करते हैं, हम नहीं जाते, हम पहले जाते हैं। क्यों भाई बताओ ना, आप सुनने वाले नहीं ना, अरे आप बताएंगे तो सुनने लायक होता, हम सुनेंगे, क्यों नहीं बताए, सुनेंगे ना, सुनेंगे तैयार, हाँ क्यों नहीं सुनेंगे, हम आए हैं इसी इतने दूर से ही तो निर्णय करने के लिए, आप बताओ। लेकिन सही बात बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे मनमानी नहीं सुनेंगे हमने, शास्त्र प्रमाण के हिसाब से बताओ तो मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। बोले ठीक है, फिर बैठ जाओ, हम बताते हैं। जो सब सिलेक्टेड मैच्योर्ड ऋषि ऊपर बैठे, बाकी सारे लाखों संख्या वाले अपने अपने ग्रुप वाले सब बैठ गए। बोले भाई देखिए, चुप से सुनिए, अभी हमारा सामने पांच भगवान है। कौन कौन है? एक तो शंकर भगवान है, देवी भगवान है, गणपति भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, विष्णु भगवान है ना? नहीं, टोटल पांच मूर्ति है। और पांचों में से हम सिलेक्ट करते हैं, हाँ हाँ वही तो है हम लोग। तो बोले अच्छा, बुरा ना मानिए, पहले जो तीन को लेते हैं हमने। हाँ बोलिए। बोले जो भगवान शंकर है, देवी माता है, गणपति बाबा है, ये तीनों के बारे में आप सब जानते हैं? क्यों नहीं जानते हैं? अरे हमारे भगवान हम नहीं जानते। अच्छा, अब जानते हैं तो ये तो आपको पता होगा कि ये तीनों एक ही परिवार के हैं। सो तो है तो सही, एक ही परिवार के। भाई जो एक ही परिवार का है तो एक ही परिवार में कॉमन सेंस होता है, हेड एक ही होगा ना, जितने परिवार आदमी सब हेड हो जाएंगे, कोई और टेल होगा ही नहीं, सब हेड हो गए। नहीं नहीं, परिवार तो मुखिया एक होगा। भाई जब मुखिया एक होगा तो एक ही परिवार में तीन ही आदमी क्यों मान के बैठे भगवान? एक दूसरे को मुंह देखने लगे, बात तो सही, बात कर, बात तो सही है। बोले भाई ये शंकर जी है, ये गृहस्वामी है, ये तो उनके पत्नी है ना, देवी माता, दुर्गा जी कहो, वैष्णवी देवी कहो, जो भी देवी कहो, जितने सारे से गाय मोट वही तो है ना, उनके पत्नी तो है धर्मपति ना, सो तो है। और गणपति बाबा तो उनके बेटा है। अरे कुशी प्रांत में तो उनके दूसरे लड़का को भगवान मान बैठे हैं। हाँ, पूरे परिवार सब भगवान है, चारों को चार। बोले आप क्यों फिर आपस में झगड़ रहे हैं? जब एक ही परिवार की व्यक्ति है, वो तो आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। आप उनके फॉलोअर होकर आपस में क्यों लड़ झगड़ते हैं? भाई समझने लायक बात है, देखिए कितने विचित्र भाव से आदर्श परिवार है उनका। बाबा जी ने उनके जो गाड़ी चलाते हैं, जो कार उनका है, वो कौन है? बैल है। शंकर जी का गाड़ी कौन है? बैल है। और उनके धर्मपत्नी माता जी की गाड़ी कौन है? शेर है। भाई जब एक ही घर के व्यक्ति है, पार्किंग तो एक ही होगा। एक ही पार्किंग में दोनों पति पत्नी अपना गाड़ी पार्क कर दे तो दूसरे दिन क्या हाल होगा? सोचने की बात है ना? नहीं, एक दूसरे का तो भोजन है। और भाई दो बेटे देखो, दो पुत्र है, दोनों का अलग अलग गाड़ी है ना? नहीं, गणपति बाबा अपने गाड़ी चढ़कर पिताजी से मिलने के लिए कभी आए, पिताजी की देखे सामने उनका गाड़ी फ्रंट गियर लगेगा ही नहीं, बैक गियर चलेगा, कितने भी प्रयास कर लगेगा। क्यों? क्योंकि पिताजी के जो ड्रेस हैं वो गाड़ी देख करके बैक में आएगा, फ्रंट चलेगा ही नहीं, पिता पुत्र का भेंट नहीं हो सकता। और दूसरे लड़का अगर आ गया पिताजी से मिलने के लिए, उनका गाड़ी कौन है? मयूर। वो अगर बायचांस कभी पिताजी बैठे होंगे मिलने के लिए आ गया तो पिताजी के कपड़ा उतर जाएगा, क्योंकि वे तो शर्मा पहनते हैं और बेल्ट बांधे हैं सांप के, बेल्ट उतर के चला जाएगा भाग करके, और रहेगा किसी। इतने विरोधी तत्व वाले सब आपस में विरोधी है, लेकिन आपस में सुना कभी लड़ाई झगड़ा किया उन्होंने? नहीं, चुपचाप रहते हैं बड़े शांति से। और हां, उनके अनुजाई होकर आपस में भिड़ के मर जाते हैं, ऐसा क्यों? हम बोले बात तो सही बात है, उनमें से हम क्यों इतने झगड़ा कर रहे हैं? बोले फिर चुप बैठो, अब तीनों से एक को मान लो, बाबा जी को मान लो। ठीक, मान लिए, बाबा जी हैं तो चलेगा, उनका मां तो उनका भी है, बेटा तो उनका भी है, उसको क्या। तो एक बाबा जी की रखे, अभी पांच से कितने में आ गए? तीन में आ गए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश। बोले तीन में अभी कंटेस्ट होगा, और कंटेस्ट चला, खूब जुक्ति शास्त्र प्रमाण दिए, लेकिन कोई किसी को मानने तो तैयार है नहीं। बोले फिर भी ये लड़ाई झगड़ा से कुछ काम नहीं बने ना, क्या करें? ना उनका टेस्ट लिया जाए, परीक्षा करके देख लिया जाए, भाई तीनों में कोई उनमें श्रेष्ठ है, चेक करके देख लिया जाए, टेस्टेड होके सर्टिफाई कर देंगे। बोले ठीक है। तो परीक्षक सबसे जो पुराने मैच्योर्ड ऋषि थे भृगु जी, उन्हीं को रिक्वेस्ट किया गया आप जाकर तीनों देव को टेस्ट कीजिए, परीक्षा करके हमको बताए रिपोर्ट। खैर उनमें से तीनों बड़े हैं, कोई दो है ये एक है, कौन है? भृगु जी ने बड़े मुश्किल से राजी हो, बोले चलो कठिन कार्य है फिर भी चलते हैं। तो भृगु जी ने चले, भृगु जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, तो सबसे पहले अपने घर में गए पिताजी के ऑफिस में। तो ब्रह्मा जी भाई पूरे यूनिवर्स के सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है ना। नहीं अब छोटे मोटे कोई प्रोजेक्ट का इंजीनियर हो उनके अंडर में तो 10-20 असिस्टेंट काम करते होंगे, जो पूरे ब्रह्मांड के सबसे बड़े चीफ इंजीनियर है तो उनके अंडर कितने बड़े बड़े बसु आदि कितने काम करते होंगे, हजारों बड़े बड़े हाई क्वालिफाइड ऑफिसर बैठे होंगे और बहुत पावरफुल कंप्यूटर वम्प्यूटर लेकर बैठे होंगे, सब काम करते होंगे, पूरे ब्रह्मांड के हाल चाल करते हैं। तो ब्रह्मा जी ने देख रहे पूरे बड़े ऑफिस में, विश्व का सबसे बड़ा ऑफिस है, उसमें सबसे बड़े आसन पर ब्रह्मा जी चतुर्मुख विराजमान है, वो देख रहे हैं कि दूर से उनके बेटा आ रहा है उनको मिलने के लिए। बड़े दिन के बाद उनका बेटा आ रहा है, कहां पृथ्वी लेकर जाकर भटक रहा था। अच्छा इतने दिन के बाद उनका पुत्र उनको मिलने आ रहा है, आप में से अनेक पिता होंगे और आपके पुत्र कहीं दूर देश में रहा होगा, बहुत दिन के बाद आपको भेंट करने के लिए आया होगा, आप देख लिए कि बेटा आपको मिलने आ रहा है तो आप प्रसन्न नहीं होंगे, कितने खुश होंगे? बहुत खुश नहीं हो जाएंगे। अरे कोई थर्ड क्लास ऑर्डिनरी पुत्र मिलने आ जाए तब तो इतना खुश हो जाए, अगर पुत्र पूरे संसार के सबसे नंबर वन क्वालिफाइड एजुकेटेड व्यक्ति होगा तो कितने खुश होंगे आपने, कोई सीमा है? भृगु जी तो नंबर वन एजुकेटेड व्यक्ति थे, पूरे संसार के पूज्य व्यक्ति थे, मानते थे लोग उनको, अरे महर्षि भृगु है, वो छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत बड़े शक्तिशाली व्यक्ति हैं। तो ब्रह्मा जी जानते जब देखे कि इतने बड़े शक्तिशाली मान्य गण्य पूरे संसार में पूज्य मेरा पुत्र मुझे आ रहा है मिलने के लिए, तो बिल्कुल ऐसे बैठ गए कि सबके ओर देखने लगे, पूरा ऑफिस में हजारों स्टाफ सब मेरे देखने लगे कि बेटा आ रहा है, ऐसे तुम्हारा जैसे नहीं है, देखना मेरे लड़का कैसा है। और ऑफिस में जितने सब स्टाफ और थे, बड़े बड़े अफसर सब थे, सब आपस में बातचीत करने लगे, पता है ये जो आ रहे हैं पता है कौन है? कौन? हमारे सार के लड़का है। कौन है? हमारे बस के लड़का है वो, देखा है, वो भारी आदमी है, पूरे संसार में हाईली क्वालिफाइड रिस्पेक्टेड है, अभी देखना कैसे पिता पुत्र का मिलन होगा, देखने लायक है। और सब चेयर सरक कर बैठ रहे हैं, देखेंगे। अब ब्रह्मा जी भी बिल्कुल ऐसे सर उठाकर बैठते हैं, बेटा आएगा मुझे कैसे अभिवादन करेगा, कैसे होगा, बड़े आशा लेकर के बैठे। भृगु जी ने प्रवेश किए, कोई ना राम ना सुन कुछ भी नहीं किए, भाई हाथ उठा देते, हालो कह देते, हाय कह देते, प्रणाम कुछ भी नहीं किए, ठुमके खड़े रहे। ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या हो गया उसको, शिष्टाचारहीन हो गया, इतने पढ़े लिखा इतनी बड़ी योग्य व्यक्ति अपने पिताजी से मिलने आ रहा है, कोई प्रणाम नहीं, अभिवादन नहीं, सम्मान नहीं, कुछ नहीं, क्या हो गया उसको? अरे चलो मैं अकेले में पिता खड़ा है, बेटा आकर कुछ नहीं बोला, मिल गया तो अलग बात है, सहन कर लेंगे, उनको थोड़ा गाली देंगे, दुष्ट दुष्ट मत करो, लेकिन पूरे समाज में बैठे हैं हजारे भद्र लोग के बीच में मुझे ऐसा ही करते, कोई वादन नहीं, अब कितने अपमान हो जाएंगे बताओ, इज्जत के सवाल है ना, समाज के अंदर आपको कोई अपमानित कर दे और आप कहीं लड़का आपको अपमान कर दे, कितनी बड़ी भारी बात है। तो ब्रह्मा जी तो बेचारे इतने आशा रखे थे कि पुत्र से किस प्रकार मिलन होगा, लेकिन सब मिटिया मिट हो गया, गुस्से में चूर चूर हो गए, एक्शन लेना चाहते थे लेकिन करें क्या, इतने सारे भद्र व्यक्ति के बीच में लड़ाई हो जाए बाप बेटा का तो अच्छा नहीं लगेगा, ये कोई साधारण पिता पुत्र तो है नहीं, संसार के सबसे पहले है ना, नहीं स्वयंभू पद्मजोनी ब्रह्मा उनके पुत्र है इतने, इन दोनों में लड़ाई हो जाएगी, तो बहुत कष्ट से अपने क्रोध को कंट्रोल करना चाह रहे थे। और इतने में भृगु जी तो खड़े तो थोड़े चेयर खींचकर बैठ ही गए। ब्रह्मा जी बोले हद हो गया ये बदमाश तो आपने से बोला भी नहीं, खींच कर आसन बैठ भी जाता है अपने से। चारों ओर देखे, बोले मौका देख करके टेबल से पेपर वोट उठाकर मारूंगा, दांत तोड़ दूंगा उसका। अब भृगु जी ने जब गए थे टेस्ट करने के लिए, हाई क्लास वीडियो कैमरा लेकर गए थे, उसको पूरा फुल चार्ज करके लगे थे, पूरा ऑन करके रखे थे, पूरा ऑन शूटिंग हो रहा था, सारे ऑफिस रूम का, पिताजी का, सारे एक्शन फेशियल फीचर सब शूटिंग हो रहा था। आप जब देखे कि ब्रह्मा जी के ये हाल, तो बोले अभी मैं थोड़ा एक मिनट और बैठूं तो दांत तोड़ देंगे, कुछ ना कुछ तो एक्शन हो जाएगा, अभी ठहरना इधर उचित नहीं है, चलो जो हो गया शूटिंग तो हो गया, अभी चले, निकल करके चले गए बाहर। जब बाहर गए, ब्रह्मा जी के क्रोध थोड़ा थोड़ा शांत हुआ, बोले इतने बदमाश लड़का निकला, कैसे संसार से उनको पूज्य मानते हैं, शिष्टाचार ही नहीं हो गया। छोटे बच्चा भी क्लास में जाता है, दूसरे क्लास में बोलते सार सान पास बोल के जाता है, ये इतना भी ज्ञानहीन हो गया, इतना कोई नहीं बोलता, ऐसे इतने बड़े आदमी है। तो जो ब्रह्मा जी अपने क्रोध संभाले रहे, बोले चलो अकेले में मिलेगा तो उसको दो थप्पड़ लगाऊंगा, तो अभी तो समाज में क्या कहूं। तो भृगु जी ने ब्रह्मा जी के पिताजी के टेस्ट तो कर ही लिए थे शूटिंग के साथ, निकल गए, बोले चलो फास्ट टेस्ट हो गया और दूसरे कैंडिडेट के पास चले। दूसरी कैंडिडेट कौन है? वो उनके भाई निकले, हाँ उनके भाई हैं। तो भाई के पास चले कैलाश, कैलाश जब पहुंचे, भाई साहब अपने भाभी के पास बैठे हुए थे। आप जब देखे दूर से कि महर्षि भृगु आ रहे हैं, तो भगवती पार्वती जी को बताने लगे, शंकर जी देवी ये देखो, जानते हैं कौन है? मेरा भाई है। अरे छोटे मोटे आदमी नहीं है, पूरे संसार के जाने माने सबसे बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं, महर्षि भृगु हैं, छोटे मोटे थोड़ी है। इतने दिन के बाद मुझे याद किया, मेरा पास आ रहा है मेरे घर में, इतने प्रसन्न चित्त होकर के उनके ग्लोरिफिकेशन करने लगे। भृगु जी का शंकर जी ने अपने मुख से अपनी पत्नी के सामने दे बड़ाई करने लगे, अरे ऐसे है, वो है, ये है, मैं जा रहा हूं, आप भले जाओ ना जाओ, मैं जा रहा हूं, मेरे भैया को मैंने खुद अब स्वागत करके घर में लेकर आऊंगा, इसे करूंगा वो करूंगा। अब बड़े आनंद से, बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से शंकर जी ने अब उठ करके पार्वती को पीछे छोड़कर उठ के चल पड़े अपने भाई को स्वागत करने के लिए, वेलकम करने के लिए। बड़े दिन से उनके भाई आ रहे हैं, और छोटे मोटे भाई नहीं, बहुत संसार के माने जाने बहुत बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। भृगु जी ने हमेशा कैमरा ऑन करे रखते थे, ऑलवेज 24 आवर्स ऑन था। तो शंकर जी बड़े हाथ बढ़ा करके, आओ आओ भाई मेरे आओ, बिल्कुल इतने प्रसन्न चित्त, इतने उत्साहपूर्ण भाव से उनको आलिंगन करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए, संबोधना करने के लिए निकल पड़े साथ में। और भृगु जी ने इसे आ रहे हैं, और जैसे पास नजदीक आ गए, अब उनको गले में लगाने वाले हैं, तो भृगु जी ने तुरंत बोल उठे, हट दुरहट यहां से, गंदे कहीं के नायाज तूने, सारे शरीर में संसान के राख लेट कर रखा है, सांप फाप कैसा किया, दुर्जय जटा झूठ, मेरे जैसे पवित्र ब्राह्मण को छूने लायक है तूने, हट यहां से, आ गया मुझे आलिंगन करने के लिए। अरे बाप रे बाप, भगवान शंकर का कितने उत्साह, कितने उमंग, कितने आनंद से जा रहे थे भैया को स्वागत करने के लिए, गले लगाने के लिए, इसी व्यवहार उनके सामने भगवान शंकर को ऐसा कहेंगे? अरे बाप रे, इमीडिएट क्रोध का पंचम तान पर पहुंच गए, एक बार कोई एक दो तीन पर नहीं, सडन पिकअप लिया, अरे उठाए अपना राइफल, मतलब त्रिशूल उनका, बोले यहीं पे स्पॉट डेथ करना है, यहीं पे मर्डर करके छोड़ूंगा, जा हो जा, जा। उठा के मारे पार्वती, बोले हाँ आपके भाई है ना, भाई भाई कुछ नहीं सुनूंगा, अरे ब्राह्मण है, ब्रह्महत्या तो सर कुछ भी हो जाए, आज तो मर्डर करके ही रहूंगा जो हो जाए। उठा के भागे भृगु जी, तो वीडियो कैमरा खोल पीछे तरफ किए, पूरा बैक गियर फुल स्पीड में लगा करके हाई स्पीड में दौड़े, क्योंकि प्राण के सवाल है अभी, आप अगर खड़े रहे तो जान ही गया, शंकर जी के सामने बचना बड़ा मुश्किल है। वो शंकर जी पीछे दौड़े और भृगु जी दौड़ रहे हैं, उनके पीछे वो भी दौड़े। भगवती पार्वती जी की विशेष कृपा थी, उन्होंने उनके पैर पकड़ पकड़ करके बोल बोल कर बड़े मुश्किल से समझा करके रोके, हाँ हाँ आपके भाई है, ब्राह्मण है, जो जो बोल दिया थोड़ा हो जाते, माफ कर दो आप। बड़े मुश्किल से आधा किलोमीटर तक खींचे चले गए, घिसट के ले गए पार्वती जी को, इतने गुस्से में हो गए। लेकिन वो भाग रहे थे भृगु जी, पीछे तरफ मुंह करके रखे थे कैमरा को, सारे शूटिंग हो रहा था, क्या हाल हो रहा था। वो जाकर के वैकुंठ के बड़र में जाकर के पीछे मुड़कर देखे, अब तक पीछे भी नहीं देख रहे थे, जाके देखे वो बच गया, माता जी के कृपा से आज तो प्राण बचा, नहीं तो आज तो परीक्षा लेते लेते समाधान हो जाता मेरा भी। बोले चलो जान बचा, अभी थर्ड कैंडिडेट के पास चलते हैं, है ना। नहीं प्रश्न भी ऐसा करते हैं, पहले कैंडिडेट में जो प्रश्न था उसमें वन फेज का था, केवल मन के द्वारा अपमान किए, कुछ नहीं कहे। सेकंड क्वेश्चन में सेकंड फेज लगाए, मन प्लस वाणी। अभी थर्ड कैंडिडेट थ्री फेज में लगाएंगे। अब गए वैकुंठ, तो कोई छोटा मोटा एरिया नहीं है, संसार में सबसे बड़ी प्रोटेक्टेड एरिया है वैकुंठ। आप दक्षिण भारत में गए होंगे, वैकुंठपति भगवान नारायण रहते हैं, उनका मंदिर छोटा होगा लेकिन उनका दीवार बहुत बड़े बड़े होता है, गोपुरम विशाल विशाल, सप्त प्राचीरम, सात दीवार सात गेट के अंदर, छोटे कहीं गमीरा के अंदर भगवान बैठे थे, उनके क्वार्टर रहता है। तो वही विशाल विशाल वैकुंठ का, वैकुंठपुर का गेट देखे, भाई मोटे मोटे तागड़े मूछ वाले सिक्योरिटी खड़े हैं, वो हमारे जैसे रेंटेड सिक्योरिटी नहीं, यहां के जैसा, ये बिल्कुल वेल ट्रेन वैकुंठ की सिक्योरिटी है, हाई टाइट चेकिंग। अब ये तो भाई भिकमंगा ब्राह्मण ठहरे रघु जी, बोले मैं जाऊंगा, मैं देखो आईडी फाइडी तो लिया ही नहीं, किए नहीं अप्लाई किसी को, बोले ये कैसे मुझे छोड़ेंगे, क्या करेंगे, देखा जाए, चल के जाता हूं, देखता हूं जो करेंगे, देखा जाए, टेस्ट चेक ट्रायल लेता हूं। तो डरते डरते प्रवेश करने जा रहे थे, हे मोटे मोटे तागड़े सिक्योरिटी खड़े थे, देखे उनको लेकिन कोई कुछ पूछे नहीं, आपस में कुछ बातचीत की, छोड़ दिए। पहला गेट पार गए, दूसरा गेट में हुई हाल, आपस में फोन फोन बातचीत किए, फिर छोड़ दिए उनको, एक एक दूसरे करके पांचवा छठा गेट तक पहुंच गए। अब सिक्स्थ गेट पार करने के लिए जब जा रहे थे, वहां की सिक्योरिटी बोले ये क्या इसी चले जा रहे हैं, कोई चेकिंग हो पूछताछ तो करना चाहिए भाई, संसार के सबसे बड़े ऑफिस अफसर हैं, वैकुंठपति विश्व ब्रह्मांड के नायक भगवान विष्णु के पास उनके ऑफिस में जा रहे हैं, इसी कुछ तो पूछताछ करें। वो निकल पड़े एक सिक्योरिटी को पूछने के लिए, दूसरा उनका सुपरवाइजर बोला मूर्ख कहां जा रहे हो, ना ऐसे ऐसे है ना, थोड़ा पता तो कर लो, सब चेकने की कुछ बात है। तो तुरंत उनका फोटो स्कैन करके जो उनका चीफ सिक्योरिटी थे सेवेंथ गेट में, उनका पास भेज दिए। मतलब सारे ऐसे ऐसे कैसे क्या करूं, तो वहां से मैसेज आया, मूर्खता मत करो, चुपचाप साइड होकर खड़े हो जाओ, पूछो ही मत उसको। बोले सर क्यों, ना अरे मूर्ख पता नहीं, थोड़े ही दिन पहले छोटे छोटे पांच साल के नंगे ब्राह्मण चार आए थे, कपड़ा लते थे नहीं, जटाजुट थे नहीं, बिल्कुल बालक अवस्था के थे चार ब्राह्मण, उनको हम केवल पूछ ही लिए, भाई इतने बड़े मालिक के पास ड्रेस तो, ड्रेस कोड तो मेंटेन करो, यूनिफॉर्म ने कुछ नहीं, कुछ तो कुछ पहने कर जाओ, इतने बड़े मालिक के पास मिलने जा रहे ऑफिस में इसे नंग धड़ंग। इतने में ही ये हाल हो गया कि गुस्से होकर के साफ दे दी, असुर बन बैठे हमारे जो सुपीरियर थे ना, हमारे सीनियर ऑफिसर को अफसर असुर बना दिए, छोटे छोटे पांच साल की उम्र वाले ब्राह्मण, ये तो ये मोटा तागड़ा ब्राह्मण है, ये छोटी मोटी रखा है, तिलक रखा है, इतने मोटा जनेऊ, वो गड़बड़ कर देगा बहुत, जाओ मत उसके पास। सब चुपचाप छोड़ दिया उनको, गए सीधा प्रवेश कर गए वैकुंठपुरी में। अब जा करके भाई कोई बड़े ऑफिसर, यहां के जो छोटे मोटे कलेक्टर है डीएम है उनके ऑफिस में जाओ, तो एक बोर्ड टंगा रहता है, विजिटिंग आवर्स, मिलने का समय इस समय से इस समय। तो इतने बड़े अफसर उनका मिलने का समय नहीं होता क्या, उनके मिलने का समय लिखा हुआ है लेकिन वो उसको देखे भी नहीं, है ना। नहीं भगवान का मिलने का समय जानते हैं, पता नहीं भगवान मिलना चाहते हैं आप सब, भगवान को कुछ आपने आपने एप्लीकेशन दाखिल करना कुछ नहीं, वही टाइम पर करो तो सुनाई करेंगे, नहीं तो नहीं। उस लोक में जो देव भाषा चलता है, संस्कृत भाषा चलता है, संस्कृत भाषा में समय को मुहूर्त कहते हैं, भगवान है परम ब्रह्म, तो विजिटिंग आवर्स का नाम है ब्रह्म मुहूर्त, वो लिखा है, आपको सब पता है ब्रह्म मुहूर्त कौन सा है ना। नहीं हाँ, वही मिलने का समय है ठाकुर जी का, उसी समय तो हम सोएंगे, है ना। नहीं दो बजे तो टीवी ऑफ करके सोएंगे, आठ बजे बेड टी लेंगे। तो ब्रह्म मुहूर्त ना कौन सा मुहूर्त है ना? नहीं, आजकल हम इतने एडवांस्ड हो चुके हैं, ऑल नाइट काम करते हैं। भगवान ने दुनिया बनाए दिन और रात, दिन में ऐसे बल्ब फिट किए जो कभी फ्यूज ही नहीं होता, कभी लोड सेटिंग नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमेशा जलता। ऐसे एक बल्ब लगा दिए, कहीं भी आप चले जाओ दुनिया में आपका सर के ऊपर दिखाई पड़ेगा, मेरे पास है बल्ब। और कभी फ्यूज नहीं होता, कभी पावर कट नहीं होता। और रात बना दिए, रात में विश्राम करना चाहिए, लेकिन हम लोग इतने एडवांस हो गए, इतने अपने आप को एडवांस समझते हैं कि दिन में ना करके नाइट ड्यूटी करते हैं, रात में काम करते हैं। रात में कौन जगते मालूम है? शास्त्र के हिसाब से, नियम के हिसाब, रात में कौन जगता है? असुर, असुर भी रात में नहीं जगते, सो जाते हैं। साधु संत का है कुछ? अरे बहुत फेमस है, चोर रात को सोता है क्या? है ना? नहीं, ये बोलना ना है, रात को कौन जगता है? चोर। वो कब सोता है? वो ब्रह्म मुहूर्त की समझ होएगा, नाइट ड्यूटी करके आएगा। तो हम जो है सब उन्हीं के खाता में है, भले छोटे बड़े वही टाइटल है। बाकी भूत प्रेत तो है ही है, लेकिन हमारे वर्ल्ड में तो वही है, तो इसे बने रहते हैं। तो जाकर के नोटिस बोर्ड को देखे नहीं और सीधा जाके ऑफिस में घुस गए, और ऑफिसर ऑफिस में थे नहीं, सिक्योरिटी खड़ा था। बोले भाई क्यों ऑफिस में घुस जाता, क्या बात है? ना मुझे मिलना है ऑफिसर से। ना साहब तो अभी नहीं है ऑफिस में। कहां है? ना निवास में है, रेसिडेंस में है। अच्छा रेसिडेंस कहां है? रेसिडेंस बताओ ना। वो पीछे बता दिया, इतने बड़े छोटे मोटे नहीं, तो पूरे सारे ब्रह्मांड के सबसे बड़े ऑफिसर मेंटेन करने वाले हैं, सबसे बड़े मेंटेनर, तो उनके निवास। बोले प्राइवेट रेसिडेंस उनका है, निजी निवास, वो पीछे चले जाओ। गया निवास में, भी दरवाजा बंद था, अंदर में कोई होंगे मालिक, रेस्ट करते होंगे, कुछ करते होंगे। वो जा करके देखा दरवाजा बंद है, मारा एक धक्का जोर से, दरवाजा धड़ खोल गया। भाई कोई बड़े अफसर का घर में मिलने जाएंगे, भाई कटसी तो वही है या कलिंग बेल दबाओ, नहीं तो उन्हें नक करो, इसे किसको पूछो, मैं कमीन साहब, कुछ भी नहीं भद्रता। ये धक्का मारे धड़ाम से करके दरवाजा खोल गया, पैर कचाड़ते हुए दुम दुम करके अंदर घुस गए। घुस करके देखे उनके निजी कक्ष में, उनके निजी कक्ष में भगवान ने विश्राम कर रहे थे, सो रहे थे, और भगवती लक्ष्मी सेवा में बैठी थी, सेवा कर रही थी। देख करके बरस पड़े, बोले अरे निकम्मा आलसी कहीं के आलसी राम, सारे संसार में साधु संत सब बोलते हैं, एडवर्टाइज करते हैं कि पालनहार है, पोषणहार है, वही सब करता है, सबको चलाता है, सबको खिलाता है, सबको पिलाता है, जब देख तब सोता ही रहता है। बोलता है मैं मेंटेन करता हूं, जब देखो कारण सागर में सोया, कारण द कसाई, खीर द कसाई, गर्भ द कसाई, सब में सोया रहता है, जब देखो तब सोता ही रहता है। बताओ आप सबको एक्सपीरियंस तो होगा, भाई परिवार एक छोटे से हमारा है, बनाना और बिगाड़ना और मेंटेन करना, तीनों में से कौन सबसे ज्यादा कष्ट है? मेंटेन करना मानते ना नहीं आपने? भाई चार पांच फैमिली मेंबर होंगे, उनको मेंटेन करने के लिए आपका, आप मैं क्या बताऊं, समझ रहे होंगे कितने हाल खराब होता है। अगर मेंटेन के समय दिन में आप सो जाओ तो सो सोकर मेंटेन कर सकते हैं? एक दिन सोकर देखो तो क्या ट्रीटमेंट हो जाए आपका। और ये देखिए संपूर्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के मेंटेनर है, सोते ही रहते हैं, सो सो करके मेंटेन करते हैं, कोई कर सकता है? यही है उनकी खासियत, सोते हुए मेंटेन कर लेते हैं। हम तो जग करके कूद करके दौड़ करके भी नहीं कर पाते हैं, और सो सो कर मेंटेन कर लेते हैं, यही तो भगवान है। और गाली बकने लगा, अरे क्या बात है, हमेशा इतने निलट्ठा है, निकम्मा है, आलसी है, वो है वो है। खूब गाली बकते बकते अनशन बोलते बोलते चल पड़ा पैर कचाड़ते हुए। भगवती लक्ष्मी दिख रहे, कौन है भिकमंगा ब्राह्मण, घुस गया कबाड़ तोड़ करके आ गया, इतनी गाली दे रहा है, पहचानता नहीं, हमारे प्रभु को ऐसे बोलता, अरे बोलते बोलते लक्ष्मी जी कुछ कही, कुछ बोले, इतने में ही चला गया पास में और पैर उठा के देख कसकर के लात जमा दिया छाती के ऊपर। बताओ ये साहस से एक भिकमंगा ब्राह्मण, अरे ये कोई छोटे मोटे आदमी पूरे संसार के सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के छाती पर जाकर लात जमा दे और गाली दे, उनके घर में ऐसे घुस जाए, ये साहस, जिनमें साथ साथ बड़े बड़े सिक्योरिटी गेट लगा हुआ है, ऐसे घुस करके ऐसे एक्शन ऐसे काम कर दे, ये पागलपन को सोच सकता है? और लक्ष्मी जी, अरे भाई कोई आप बैठे होंगे, आपको कोई आकर अपमान कर दे, किक मार दे, तो थोड़ा झगड़ा झटी हो जाएगा, लेकिन आप अकेले में हो तो चलेगा, लेकिन आप अगर अकेले में नहीं है, कुछ फ्रेंड सर्कल में हो तब तो थोड़ा ज्यादा गुस्सा होगा, लेकिन अगर आप अपने सपत्नी के, अपने पत्नी के साथ हो, कोई आकर छाती में आपको लात चला दे, तो तब तो डू और डाई, मारूंगा नहीं तो मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं आज तो, पत्नी के सामने इतने बड़े अपमान, ये नहीं सहन हो सकता। अरे भगवान सामने, वो तो जोग निद्रा में है, और भगवती लक्ष्मी के सामने अपने पत्नी के, पति के छाती में कस करके लात चला दे और गाली बकते रहे। लक्ष्मी जी बिल्कुल गुस्से में आ गई, कुछ एक्शन लेनी चाह रही थी, इसने एक्शन लेने से पहले पतिदेव खड़े हो गए। लक्ष्मी सोचे ठीक है अब मजा चखाएंगे उसको, मेरे पति को छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, एक कल करेंगे, एक से एक सिक्योरिटी आएंगे, उसका हाल खराब कर देंगे, अभी नहीं तो खोद मार सकते हैं, उनका हाथ में आयुध रहते हैं, चक्र गदा, ऐसे छोटे मोटे आदमी थोड़ी है, लात मार दे बदमाश कहीं के। लेकिन पतिदेव धड़ से उठे, लक्ष्मी जी देख रही है, उठ करके सीधा जा करके ब्राह्मण के सामने घुटने टेक करके बैठ गए, नेल डाउन हो गए, हाथ जोड़ करके बोलने लगे, ऐसे बात बोले, लक्ष्मी जी बोलते हैं क्या हो रहा है ये सब, हाथ जोड़कर बोलने, हे ब्राह्मण्य देव, हे महर्षि भृगु, आप जो बात मुझे कहे, जो मुझे गाली दिए, मुझे दंड दिए, बिल्कुल उचित है, बिल्कुल सही आपने कहा, मैं जैसे निलट्ठा निकम्मा आलसी राम दुनिया में कोई नहीं है, नंबर वन के वही हूं, आप जैसे ब्राह्मण अतिथि मेरे घर में आए, मैं जाकर स्वागत नहीं कर पाया, सोते ही रह गया, ऐसा आदमी हूं, कितने नीच हूं, मैंने आपने आपको धिक्कार करते हुए और महर्षि भृगु की प्रशंसा करते हुए बोलते जा रहे थे, आंख से धार धार आंसू बह रहा था, बोले हे ब्राह्मण्य देव, आप जो मुझे दंड दिए, जो लात मारे मेरे छाती के ऊपर, मैं वचन देकर कहता हूं, इस लात को मैं कभी मिटने ही नहीं दूंगा, जुगपत, हमेशा कपड़ा भी नहीं ढांकूंगा, खोलकर छाती में दिखाऊंगा कि देखो मैं ऐसा हूं जो ब्राह्मण के लात पड़ा था, स्टांप करके लगाऊंगा, मिटने ही नहीं दूंगा, और आपके लात मेरे छाती में पड़ा तो मेरा, मैं, मेरा छाती तो वक्षस्थल तो इतने पवित्र हो गया आपके चरण स्पर्श पा करके, आज से लक्ष्मी भगवती मेरे चरण में नहीं रहेगी, आज तो वक्ष विलासिनी हो जाएगी, इतने पवित्र जगह छोड़कर चरण में क्यों बैठेगी, आपके चरण पदाघात पा करके मेरे वक्ष तो पवित्र से पवित्र हो गया। लेकिन एक बात कहूं, मैं तो ठहरा आलसी राम नीच, ऐसे ही सोते सोने वाला हो, लेकिन आप जैसे तपस्वी ब्राह्मण है, आपके चरण कमल तो बड़े मुलायम है, मैं तो बड़ा निष्ठुर कठोर छाती वाला हूं, इतने कठोर छाती पर आपने मुलायम चरण जो पदाघात किया, आपको बड़े कष्ट हुआ होगा, चलो मैं आपके मसाज करके थोड़ा आपके कष्ट लाघव करता हूं। दोनों हाथ में ब्राह्मण भृगु के चरण को हाथ में लेकर के दबाने लगे भगवान, रोते रोते। लक्ष्मी जी देख रही, हो क्या रहा है ये सब, भृगु महर्षि भी कैमरा ऑन था, सारा शूटिंग हो रहा था, एतादृश व्यवहार इस भगवान का, इस विष्णु के देख करके कुछ बोलना तो चाह रहे थे लेकिन बोली नहीं निकला, कंठ रुद्ध हो गया, वाणी बाष्पीभूत हो गया, केवल सिक सिक करके रोने लगे, दोनों आंख से आंसू बहने लगा, कुछ बोल नहीं पाए, तुरंत मुड़ करके आ गए नीचे, नीचे आ गए, सारे शूटिंग हो चुका था, सीधा आके लैंडिंग के रोते ही रोते आए, पूरा रास्ता भर रो रहे थे, हाय हाय कर रहे थे। जब आके लैंडिंग किए तो यहां तो सब बैठे थे इतने देर से लोग, सब बोले हां आ गए भू, अब बताएंगे क्या टेस्ट लिए, क्या रिपोर्ट, बताओ बताना, मैं रिपोर्ट नहीं बताने का, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा, मुझे अब पीपीटी में दिखा देता हूं, देख लो आप सब, शूटिंग है, तो व्यवस्था था, प्रेजेंटेशन दिखा दिए, है ना, नहीं और सारे हजारों लाखों जो बैठे थे सब देख लिए, हूबहू कैसे रिपोर्ट, सब प्रेजेंटेशन हो गया। अभी आप जो बैठे हैं ये पीपीटी के फैसिलिटियां नहीं, लेकिन तुमको सुनते लिए ना आपने, आ गया ना समझ में। तो भृगु जी ने वो कुछ नहीं बताया, बोले आप ही लोग पीपीटी देख लिए, अभी आप ही बताओ कौन श्रेष्ठ है, मैं नहीं कुछ बताऊंगा। तो आप तो कम से कम सुन लिए, मैं आपको पूछता हूं, आप लोग सुन लिए, आप ही लोग बताइए अभी इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है। हाँ सही में, क्यों वो सोए थे इसलिए, बाकी तो कुछ किए नहीं, सो सो करके श्रेष्ठ हो जाएंगे क्या, कैसे, प्रेम की भावना, सहिष्णुता, वदान्यता, ब्राह्मण्यता, अभी तक आपने जो जो अच्छे गुण सुने हैं जाने हैं, कौन ऐसा गुण है जो उनका अंदर नहीं है, बताओ कोई ऐसा है, सकल गुण गण धाम, सारे गुण के स्टोर हाउस है, जिसका पास इतने अच्छे गुण होगा, सुगुण होगा, उनका यही स्वभाव, यही परिचय है, नम्रंती फलिनो वृक्ष, नम्रंती गुणिनो जनाः। जैसे पेड़ में फल बहुत सारे लग जाए तो उसका शाखा प्रशाखा सब झुक जाएगा, ठीक इसके इसी प्रकार जिस व्यक्ति के पास अनेक सुगुण हो तो भी ऐसे नहीं खड़ा रहेगा, वो झुक झुक कर रहेगा। एतादृश भगवान के व्यवहार, उनके वाणी, उनके आचरण, तो भृगु महर्षि तो सोच सोच केवल रोते ही रह गए, बोलने के लायक नहीं है, इतने महान है, इतने महान है। तो इसी प्रकार प्रेजेंटेशन दे करके जो लाखों मंडली बैठे हुए थे, अलग अलग ग्रुप वाले, पांच ग्रुप वाले, सब एक साथ में दो हाथ ऊपर उठाकर बोले, ईश्वर परम कृष्ण सचिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदम सर्व कारण कारणम। बोले अगर कोई ईश्वर हो, ईश्वर नहीं, ईश्वर ईश्वर को भी, ईश्वर परमेश्वर कोई हो तो केवल सचिदानंद विग्रह भगवान कृष्ण है, वही सभी के आदि है, वही सर्व कारण के कारण है। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? यस,
मैंने भी समाज में जो जो अग्रगणीय व्यक्ति है, भक्ति कोई भी कर रहे, कोई एस्ट्रोलॉजर है, कोई पुजारी है, उन सबको मैं चेक करता रहता हूं कि आपके हिसाब से कौन से सुप्रीम गॉड है, शिव जी है, माता जी है या कृष्ण है। तो किसी ने आज तक विष्णु या कृष्ण सुप्रीम है ऐसा नहीं बोला, हालांकि उनकी बहुत ही अच्छी स्थिति है, वेदज्ञ है, कर्मकांडी है, कुछ भी। तो कृष्ण को ये अपनी सुप्रीमसी इंडिया जैसे लोक में जो पढ़े लिखे लोग हैं, भावनाशाली है, उनको भी पता नहीं है कि वो सुप्रीम गॉड है, तो ऐसी स्थिति में वो क्यों रहना चाहते और क्यों पसंद करते कि चलो कोई वांधा नहीं, मेरे को कोई सुप्रीम नहीं माने, और मेरे जो असिस्टेंट है, मेरे जो मिडल मैन है, उसको सुप्रीम मानते हैं, ऐसा परिस्थिति क्यों बर्दाश्त कर रहे हैं?
बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, वो हमको ड्यूटी दे रहे हैं, हम लोग को प्रचार करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा। भगवान के ये जो टेस्ट रिपोर्ट है, टेस्टेड होकर सर्टिफाइड हो चुका है ऑलरेडी, हमको दोबारा टेस्ट नहीं करना चाहिए, मथापिची नहीं करना चाहिए। सारे संसार के जो सबसे बड़े बड़े विद्वान, ब्राह्मण ऋषि महर्षि सब बैठ करके महीने दिन चर्चा करके, शास्त्र पुराण वेद उपनिषद के ऋचा प्रमाण ले करके, फिर साक्षात टेस्ट लेकर के सर्टिफाई कर दिए कि यही श्रेष्ठ है, और हम फिर भी मूर्ख होंगे तो नहीं मानेंगे उसको, अगर इतने समझ है तो मान लेना चाहिए। और जो शास्त्र नहीं पढ़े हैं, जानते नहीं, हमारा काम है उसको सुनाए, उनको जनाए, तो जान के समझ लो। ओके, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत महापुराण की समेत भक्तवृंद की जय है।